ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को विशेष संबोधन दे रहे हैं और वो है सेंसिबल बच्चे। सेंस माना समझदार, खुशबू। तो बाबा आज हम बच्चों में खुशबू भरने के लिए, समझ भरने के लिए समझानी दे रहे हैं कि मीठे बच्चे तुम अविनाशी आत्मा हो और अविनाशी आत्मा को बाप के साथ पहले तबके में जाना है। पहला तबका माना निराकारी दुनिया और निराकारी दुनिया में निराकार बनकर ही जा सकते हैं। बाबा ने आज के महावाक्यों में उच्चारित किया कि बाबा आए हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने और वो पतित सृष्टि सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाएंगे। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए, ये नशा रहना चाहिए कि मैं पतित पावन बाप के साथ मददगार हूं। सदा नशा रहे कि मेरा साथी कौन है, मैं किसके साथ हूं, कौन मेरे मददगार है, मैं किसका मददगार हूं, ये नशा रहे। बाबा ने कहा जो ज्ञान बाबा देते हैं वो दिल से लगा रहना चाहिए, दिल ही दिल में अंदर अंदर बात होती रहनी चाहिए जिससे गुप्त नशा चढ़े। बाबा ने कहा तुम आत्मा भी अविनाशी हो, मैं बाबा भी अविनाशी हूं और ये ड्रामा भी अविनाशी है। तो अविनाशी है, इसके महत्व को समझते हुए बच्चों को क्या करना है, श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत पर चलते हुए अब ऐसे कोई कर्म नहीं करने हैं जो धर्मराजपुरी में सजाई मिले, तो उनसे मुक्त होने के लिए सदैव बाप की श्रीमत पर आत्माभिमानी बनकर रहना है। आज बाबा स्वदेश और विदेश की भी याद दिला रहे हैं। हमारा स्वमान है, हमारा आत्माभिमानी स्थिति है, हमारा स्वरूप है स्वदेश। और बाबा ने विदेश के बारे में भी बताया कि विदेश क्या है, पुरानी दुनिया को याद रखना, पुरानी दुनिया से बुद्धि लगाना, पुरानी दुनिया से संबंध रखना, ये विदेश है। तो सब कौन बैठे हैं, कौन बैठे, स्वदेशी। स्वदेशी माने सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस और बाबा की याद में लवली। बाबा की हर शिक्षा को दिल से लगाकर गुप्त मेहनत करने वाले। तो सुनते हैं आज प्यारे बाबा के द्वारा अनमोल मधुर महावाक्य। 12 तारीख के आज महावाक्य हैं। प्यारे बाबा ने कहा मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके में जाना है। आज के महावाक्यों का प्रश्न है कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है। चिंतन चला कौन सी मेहनत करनी है। प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपनी दिल में लगाते रहो। अंदर ही अंदर उसको मनन कर, हजम करो। जिससे शक्ति मिलेगी, यह मेहनत अवश्य हरेक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन। हम किसके सामने बैठे हैं? है नशा? कौन बैठा है सन्मुख? भाग्य विधाता स्वयं सर्वशक्तिवान, मेरा प्राणों का आधार, प्राण प्रिय मेरा बाबा बैठा है, नशा चढ़ रहा है। ओम शांति, ये किसने कहा? दो बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा और एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति। मैं शांति का सागर हूं। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति। मैं तो सदैव देही अभिमानी हूं, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूं। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो? पूछ रहे बाबा, बताओ क्या जानते हो? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जो ऑलवेज निराकारी देही अभिमानी और पवित्र स्वरूप में रहता है, जिसको कोई शरीर नहीं है। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, मैं सदैव देही अभिमानी हूं, मैं देह के भान में नहीं आता हूं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ, सूक्ष्म वतन में जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता, चित्र बनते हैं, लेकिन वे निराकार, वे कभी साकार बनते ही नहीं। पूजा भी निराकार की होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है कि निराकार और साकार और सूक्ष्म में क्या अंतर है। तीनों अंतर को बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। भक्ति तो किए, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में क्या नहीं होता? सतयुग त्रेता में बताओ भाई, ना भक्ति होती है ना चित्र होते हैं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में ना चित्रों की भक्ति होती ना विचित्र की भक्ति होती। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है, उनका ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में ये बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन वासी। पहला तबका फिर दूसरा तबका। पहला तबका कौन सा है? मूल वतन, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, ये पहला तबका है। दूसरा तबका है सूक्ष्म लोक। ऊंचते ऊंच मूल वतन उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। सेकेंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं, और थर्ड तबके में कौन है? स्थूल शरीरधारी हैं। इसमें मूझना नहीं है। तन हमारा कहाँ है? थर्ड फ्लोर पर है। और आत्मा कहाँ है? मन कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर पर, निराकारी बाप के साथ सालिग्राम बनकर। ये बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है, वो रहता है, तो वही सारे रहस्य बताता है। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। अब हम सब आत्माओं की दुनिया इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं। वहां है आत्माएं, यहां है जीव आत्माएं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। कहाँ है आत्माएं? मैंने पीछे से आवाज आई नहीं है। कहाँ है आत्माएं और कहाँ है जीवात्मा? निराकारी दुनिया में है आत्माएं और साकारी दुनिया में है जीवात्मा। बराबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं, जो अभी तक पार्ट बजाने के लिए आते हैं साकार में। अभी तक परमधाम से आत्माएं साकार लोक में आती रहती हैं पार्ट बजाने के लिए। वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्माएं क्या है? हम आत्माएं, ये नशा होना चाहिए। आत्मा कैसी है? ऊर्जा है, पुंज है ऊर्जा का, शक्ति है, हल्की है, हाँ विनाशी है। सारी शक्तियां कर्म करने की ताकत उसके अंदर ही निहित है। हम आत्मा है, ये नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़े ही होना चाहिए। विनाशी चीज तो अभी है, अभी नहीं है। अविनाशी तो शाश्वत है, सदैव है, सनातन है। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे या आत्माभिमानी अच्छे, बोलो। सेंसिबल कौन पूछ रहे हैं बाबा, सेंसिबल कौन? आत्मा अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है और देह विनाशी है, पल पल नष्ट होती रहती है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं, हम आत्मा परमधाम में बाप के साथ रहने वाली, वहां से आते या पार्ट बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में निराकार बाबा, यह तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो यहां ठहराना, वहां हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है बोलो शिव, आत्मा का नाम है बोलो शालिग्राम। शिव के साथ जैसा पिता का नाम जैसा बच्चे का नाम, शिव के साथ शालिग्राम, वो परमात्मा में आत्मा। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना, दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वे अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी, आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो ये निश्चय करो हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो कि यह जो आत्माओं का झाड़ है उनके पहले जरूर बीज होता है, जैसे सिजरा बनाती है ना, बड़ा बाप फिर उनसे दो चार बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते जाते, एक तो वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता। वंशावली झाड़ बनाकर बाबा ने हमें परमधाम का सीक्रेट समझाया, पहले बीज फिर उससे डाल लिया तना, किस प्रकार से फैलता जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है ना, फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है। ऊंचते ऊंचे बाप, तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा इस शरीर में आया हुआ है, रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाती। अब रूह पढ़ रही है ना, कान के द्वारा रूह बोलो सुन रही है, आंख के द्वारा, अंदर की भी आंखें खुल रही हैं, बाहर की भी आंखें खुल रही हैं, सन्मुख बाप को बैठे को देख रही है, दोनों आंखें अंदर के भी खुल गए बाहर के भी खुल गए, दोनों खुले। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है। ऊंचते ऊंचे बाप, तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा इस शरीर में आया हुआ है, रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाती है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे, कैसे समझेंगे भाषा को, वहां तो मौन की भाषा है, वहां तो शब्द है ही नहीं, इसलिए साकार में आकर बाबा को पढ़ाना पड़ता है। सतयुग में तो ये नॉलेज किसको भी रहती नहीं, बाप ही संगम पर आकर ये नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं। क्या समझाते हैं अभी बाप तुम बच्चों को? बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है, वह है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं निराकारी दुनिया में। कौन रहते हैं? बाप और बच्चे रहते हैं। सब ब्रदर्स हैं। जितने भी आत्मा वहां रहती हैं वो बाप के बच्चे होने के कारण आपस में सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता जब यहां शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई। भाई का जरूर बाप भी होगा ना? जब भाई भाई हैं, बच्चे हैं, तो पिता जरूर होना चाहिए। तो पिता जरूर है। और वह है वो बाप कौन है? क्या कहेंगे उस बाप को? कल भी बाबा ने बताया था कौन सा बाप है वो। कल बाबा ने पूछा था कितने फादर्स हैं, तो ये फादर कौन सा है? तो बाबा ने कहा ये बड़ा बाप है, बड़े से बड़ा बाप है। भाई का जरूर बाप भी होगा ना? वह है परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में हैं। सीता पुकारती थी हे राम। बाप समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है ना? अभी तुम जानते हो आधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुख धाम में रहेंगे। सुख धाम में वहां पुकारने की किसको भी आवश्यकता नहीं है। यहां तो दिन रात पुकारते रहते हैं, दुखकर्ता सुखकर्ता आओ, पतित पावन आओ, शांति दाता आओ, सदगति दाता आओ, सन्मति दाता आओ, यहां तो पुकारते रहते हैं। आधा कल्प सुखधाम में पुकारने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते नहीं। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती। अब बाप समझाती है आत्मा तो अविनाशी है, लीन कैसे हो जाएगी? एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। दोनों की अपनी आइडेंटिटी है। परमात्मा भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, दोनों अविनाशी हैं। जैसे बाप अविनाशी वैसे आत्मा भी अविनाशी। यहां आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते ही हैं, क्या कहते हैं उनको? बोलो भाई। उनको कहते हैं गॉड फादर। क्या कहते हैं उनको? गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है, आत्माएं भी अविनाशी है। और क्या अविनाशी है? ड्रामा भी अविनाशी है। कल्प पूर्व को रिपीट करने तपस्या करने पहुंच गए। तुम बच्चे जानते हो कितनी बातें बाबा बताते हैं, समकक्ष देखते हैं हमको बाबा अपने। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे समझते हो, तुम बच्चे जानते हो कितनी बार मुरली में आता है। जैसे बाबा अपनी ओन इमेज में हम बच्चों को देखते हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं तुम बच्चे जानते हो। तो जो बाबा ने ज्ञान सागर से ज्ञान निकला है वो सारा रिपीट होने लगता है कि ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन बाबा सागर की लहर अपनी होती है। तुम बच्चे जानते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। हम सूर्यवंशी, फिर हम सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं, 14 कला वालों को बोलो बहने, 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता भी उनको नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वो मजा नहीं रहता। चाहे वस्त्र हो नया पुराना हो जाए, चाहे मकान हो नया पुराना हो जाए, पुरानी चीज में वो मजा नहीं आता। पहले संपूर्ण पवित्र रहते, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज होती है। यह दुनिया एक बहुत बड़ा मांडवा है। क्या है ये दुनिया? बहुत बड़ा मांडवा है। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है। इनकी एंड कहां है वे निकाल नहीं सकते। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्ममय तत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती, अनलिमिटेड है। न्यू साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा है, बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। यहां बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है। खेती आदि भी तो चाहिए ना, वहां तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी? वहां तो भोगता है। खाने व भोगने आदि की कोई चीज होती नहीं। बाप समझाते हैं ये ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्पवाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो ये नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे। शूद्र से ब्राह्मण बनने, अभी सारे कौन बैठे हैं? ब्राह्मण सो फरिश्ता, ऊंचते ऊंच बाप की पढ़ाई पढ़ रही। अब फिर हम आपके पास आए हैं। वे निराकार होने कारण तुम कहेंगे दादा पास आए हैं। बाप ने इनमें प्रवेश किया है। बाप कहते हैं, जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो वैसे ही मैं ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। आपका पार्ट तो दिखाई दे रहा है ना, अनुभव हो रहा है ना, फील करते हो ना कि आत्मा शरीर धारण कर कैसे पार्ट बजा रही है। तो बाबा कहते तुम्हारी तरह मैं भी साकार तन लेकर तुम्हें पढ़ाने के लिए पार्ट बजाता हूँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊ। शिव जयंती भी मनाती है। बाबा के पार्ट बजाने का यादगार क्या है? शिव जयंती। शिव तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं? मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बापी आकर सिखलाती। मुझे ही पति पावन ज्ञान का सागर कहती। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो? अब बाबा पूछ रहे हैं आपसे कि तुम बच्चे समझते हो, गर्दन हिलाओ कि जी बाबा हम समझते हैं। बहने भी हिलाओ गर्दन, जी बाबा समझते हैं। क्या समझते हैं? बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट को भी समझना चाहिए। जो शिव बाबा का पार्ट है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं है, और जो तुम बच्चों का है वो भी नहीं है। तो तीनों बातों को अलग अलग समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वह पति पावन है, हरेक की महिमा अलग अलग है, हरेक की ड्यूटी अलग अलग है, हरेक की महिमा अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग होती है। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, सतीश भाई किसका उदाहरण दे रहे हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है शरीर मेरा है। प्रेसिडेंट का रोल अपना है, प्राइम मिनिस्टर का रोल अपना है। ऐसे ही आत्मा का रोल अपना है, परमात्मा का रोल अपना है। आत्मा शरीर के, आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। आत्मा निकल जाए तो कहेगी आत्मा शरीर है, बोलो परवाह करेगी शरीर का कोई? आत्मा ही परवाह कर रही है। आत्मा के निकलते ही शरीर की कोई परवाह नहीं, कैसे भी पड़ा है पड़ा है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सके। शिव बाबा भी निराकार है, उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? बोलो, जिनके हाथ में मुरली है वो नहीं, जो बिना मुरली वाले हैं वो बोलो। हाँ, बाप को ही सब याद करते हैं। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सके। शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं। जी, इसलिए दिखाते हैं। माताओं की तो आवाज आई, भाइयों की क्या दिखाते हैं? मुख से गंगा निकली, मुख के द्वारा बोलते हैं तो मुख के द्वारा गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहां से आया, तो इसमें आकर बैठते, उससे ज्ञान गंगा बहाती। बाप को ही सब याद करते, हे पति पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सर्जन, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला, सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप कौन है, क्या संबंध है उससे? कल सुना था आपने, भट्टी वालों ने कल सुना था कि पति पावन बनाने वाला एक बाप है, पर उसके साथ हमारा कौन सा संबंध है? सर्जन है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है, जो सारी दुनिया का ऑपरेट कर देता है, रिज्यूविनेट कर देता है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं, ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए? सतयुगी लक्ष्मी नारायण को ऐसे कर्म किसने सिखाए? जो ऐसे निरोगी स्वस्थ बने, बापी आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाती है। श्रेष्ठ कर्म माना सोल कॉन्शियस होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना, बाबा की श्रीमत को याद रखकर कर्मेंद्रियों से कर्म करना, तो क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ कर्म। यहां तो कर्म ही कूटते रहते। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं, वहां कोई क्या क्या नहीं है सतयुग में, क्या क्या नहीं है सतयुग में, वहां कोई दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है। यहां तो एक दो को दुखी देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात बोलो होती नहीं। जो कहा जाए ये कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकती। तुम जानते हो? अब फिर पांचवी बार बाबा कह रही हैं, तुम जानते हो? हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो बनती है। सतयुग में पांच तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की दो कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। दो कला कम हो गई त्रेता युग में, तो दो कला कम होने से प्रकृति भी डाउन हो गई, फिर शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि भी दो कला, सृष्टि की भी दो कला कम हो जाती। ये सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई बोलो समझा ना सके। ऐसा वंडरफुल ज्ञान, ऐसी वंडरफुल समझ, अंदर की आंखें खोलने वाला ज्ञान कोई समझा ना सके। अच्छा मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट नंबर एक, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े। अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। दूसरा पॉइंट, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बनना है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भाव, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भाव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया ही विदेश है। हमारी दादी जानकी जी का उदाहरण है ना, वो यज्ञ से मिली हुई चीज ही यूज करती थी विदेश में रहते हुए भी, वहां की कोई चीज यूज नहीं करती थी। ऐसे आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया ही विदेश है, इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित ना हो, स्वदेशी बनो। अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परमधाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। कहां के निवासी है ब्राह्मण? हम सबका परमानेंट एड्रेस क्या है बोलो, आवाज आई नहीं है, मधुबन। सिर्फ 5 दिन मधुबन नहीं रह रहे भट्टी करने के लिए, लेकिन हम परमानेंट एड्रेस हमारा मधुबन है। ब्राह्मण माने ब्रह्मा बाबा के गले का हार, मधुबन के निवासी। तनवा है कर्म क्षेत्र पर परमानेंट एड्रेस हमारा मधुबन है। इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ। सहनशील बनो। होली हंस की विशेषता, सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। क्या बताई होली हंस की विशेषता? सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण करने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। ओम शांति। ये थे आज के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, शिक्षाएं, आज्ञाएं, निर्देशन। अभी बाबा को याद करेंगे और बाबा को याद करके